आपसे क्लास चल रहा था 5 जनवरी 1968 शुक्रवार को। दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि मिनिमम एक जन्म होता है और ज्यादा से ज्यादा 84 का चक्र गाया हुआ है, 84 जन्म होते हैं। जरूर जो 84 जन्म भोगेंगे तो पहले पहले आते होंगे, बाकी जिनको कम जन्म लेना है एक जन्म तो विनाश होता है तब आते हैं। और जनसंख्या तो फिर बढ़ती ही रहती है ना, तो वो बाकी एक जन्म दो जन्म आके बाकी कहाँ रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं, आत्मलोक में पड़ रहते हैं। तो ये बुद्धि में याद करो। तो शांति धाम जहां हम आत्माएं रहते हैं, तो हम आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। पीछे है सतयुग सुख की दुनिया, उसमें सुख भी है तो शांति भी है, बाकी बाद में होता है दुख। तो अभी बाप आकर समझाते हैं इस दुख की दुनिया से छूटना है, शांति चाहते हो तो माम एकम याद करो, क्योंकि मुझे एक के सिवाय और कोई भी नहीं है जिसको याद करेंगे तो सुख और शांति मिलेगी। इसलिए देह के सभी धर्मों को छोड़ो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, देह के संबंधों को देह के पदार्थों को सब की याद छोड़ो, और ये बात सबको कहते हैं। जो भी सब बैठे हुए हैं सब धर्म वाले, उनको कहते हैं कि तुम सब पहले तो आत्मा हो ना, आपस में आत्मा आत्मा ब्रदर्स हो, और तुम आत्माओं का एक ही फादर है। तुम जो बैठे बैठे समझे हुए हो कि हम तो देह हैं, अरे नहीं, तुम तो अविनाशी आत्मा हो, देह तो विनाशी है। तो जो अविनाशी आत्मा आत्मा आपस में ब्रदर्स हैं, तो उनको फिर बाप से इनहेरिटेंस चाहिए, है ना। तो अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप आकर के इनहेरिटेंस देते हैं। तो देखो पहले भी तो ये इनहेरिटेंस दिया है ना, तुम आत्मा जब सत्व प्रधान बनती हो, सत्व प्रधान स्टेज में आती हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले, तो तुम्हारा एक ही धर्म आत्मिक स्थिति में टिकती हो, सुख अनुभव करती हो, शांति अनुभव करती हो, तो बाकी जो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं वो तो मुक्तिधाम से आते हैं ना। तो देखो इस दुनिया में आकर के जीवन मुक्ति धाम, तो मुक्ति धाम का भी वर्षा देते हैं, जीवन मुक्ति का भी वर्षा देते हैं। और देने वाला बाप है, बाप से ही ये बेहद का वर्षा मिलता है। और तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना, तो ये जो शांति शांति चिल्लाते रहते हैं सो भी तो बाप ही देते हैं। तो सो बाप को जानना चाहिए, बाप को जानने बगैर मनुष्य आरहंस बन पड़े। और ये देखो सारी दुनिया अभी आरहंस की है, बरोबर आरहंस। एक दो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, फिर कहते हैं शांति शांति। अरे तुम लोग न जानने के कारण ये शांति ढूंढते रहते हो। अभी शांति कहां से मिलेगी, किससे मिलेगी, कब मिलेगी, कब थी, ये सब बात जानने के लिए तीसरा नेत्र ज्ञान का जरूर चाहिए। समझे ना, इस दुनिया में तो कोई के पास तीसरा नेत्र ज्ञान का है ही नहीं ना। तो जब त्रिनेत्री बनो, त्रिकालदर्शी बनो, यानी तुमको उस त्रिनेत्री आत्मा का ज्ञान हो। जैसे बाबा में ज्ञान है ना, तो जानते हो कि बाबा में आदि मध्य अंत का इस सृष्टि का ज्ञान है ना। तो आकर के हम बच्चों को देते हैं, तो पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए। और बाप को न जानने के कारण ये सब बच्चे निर्धन के बन पड़े, इसलिए सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। समझे ना, कई तो बोलते हैं आओ हमारे साथ लड़ के देखो, शास्त्रवाद करो। तो क्या कहते हैं शास्त्र, किसी ने कहा शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ शास्त्रवाद अर्थात शास्त्रों का अर्थ करो। अभी देखो यहां तो कोई शास्त्रों के और शास्त्रों के अर्थ की बात ही नहीं है, तो शास्त्रों की अथॉरिटी हो गई। हाँ, और ये किस बात की अथॉरिटी है बाप, ये तो अथॉरिटी है विश्व में शांति कैसे हो, कैसे स्थापन हो। बाकी उन शास्त्रकारों का तो वो भक्ति मार्ग है, बुद्धि भागती रहती है। भारतवासी भी देखो कन्वर्ट होते रहते हैं, देवी देवता से हिंदू बन गए, हिंदू से दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो कोई एक शास्त्र के पीछे भागते हैं क्या है? दूसरे धर्मों में भी तो शास्त्र तो है ना। तो ये सब शास्त्र जो भी बुद्धि को भगाते रहते हैं, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आस्था बैठती रहती है, टूटती रहती है। तो ये सब भक्ति मार्ग की सीढ़ी है। देखो इसे ब्रह्मा ने भी तो कितने गुरु किए, 12 गुरु किए, आस्था एक से टूटी तभी तो किया दूसरे गुरु, एक से टूटी दूसरे में बैठी, दूसरे ये भागती रहती। तो ये भक्ति मार्ग है, मनांतर्गति मार्ग। जैसे जैसे गुरुओं को बदलते जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते जाते हैं, और ही नीचे करते जाते हैं। क्योंकि ये आत्मा है तो सब पहले सत्व प्रधान थी ना, 16 कला संपूर्ण थी। इसी देखो सुख भोगते भोगते सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ये तो बाप ने समझाया ना कि सीढ़ी कैसे नीचे उतरते हैं है? कैसे उतरते हैं? संग के रंग में आते आते नीचे उतरते रहते हैं। ऐसे ऐसे 84 जन्म कैसे लेते हैं सो बाप बैठ बताते हैं। और वो भी कोई 84 जन्म सभी थोड़े ही लेते हैं, नहीं, हाँ मैक्सिमम 84 जन्म जो लेते हैं वो तो सत्ययुग में आते हैं। सत्ययुग में वो पूज्य जो पूज्य देवता थे वो फिर अब पुजारी कैसे बनते हैं है? ऐसे भी नहीं है कि बाप पूज्य है और वो पुजारी होते हैं, नहीं, बाप तो समझाते हैं कि बच्चे पूज्य बन करके तुम बच्चे पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य बनते हैं कि कोई बनाता है? अपने पुरुषार्थ से आप ही पूज्य बनते हो, आप ही पुजारी बनते। तो जो पूज्य होते हैं सो पुजारी बनते जरूर हैं, बन जाते हैं, फिर वो पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। ये चक्र चलता रहता है। हाँ ये जरूर है कि जब पूज्य हैं तो पुजारी नहीं है। स्वर्ग में देवताएं कोई की पूजा करते हैं क्या? नहीं। और जब पुजारी है तो फिर पूज्य, पूज्य नहीं है ना। देखो जैसे ये शंकराचार्य है तो वो तो शिव की पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने वाला कौन हुआ? पुजारी हुआ ना, तो वो तो पूज्य नहीं कहला सकते, नहीं है पुजारी। तो जो पुजारी थे नई दुनिया में सो पूज्य बने, वो पुरानी दुनिया में जो पुजारी थे वो पूज्य बने नई दुनिया में। जब बाप आवे तभी पूज्य बनावे, क्योंकि पुजारी होते हैं तमो प्रधान या तो रजो प्रधान होते हैं। बाकी जो सत्व प्रधान होते हैं वो तो पुजारी नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्व प्रधान तो पूज्य होते हैं। तो सतो और सतो प्रधान वो तो नई दुनिया में, सत्व प्रधान 16 कला संपूर्ण और सतो बनते हैं 14 कला या उससे भी नीचे त्रेतन है, तो वो भी पूज्य क्योंकि वहां कोई 10 सिर वाले रावण का राज्य नहीं है, यानी अनेक मतों का राज्य नहीं है। ये रावण जो है वो पुराना एनिमी है और सारे विश्व का एनिमी। पहले किसका एनिमी है? है पहले भक्तों का एनिमी है, और उन भक्तों में भी जो भारत के भक्त हैं, पहले देव बताए थे, अभी पुजारी बने हैं, तो भारत का एनिमी है पहले पहले, क्योंकि पहले जैसे बाप आते हैं, कहां आते हैं? भारत में आते हैं। वैसे ही फिर रावण कहां आते हैं? हाँ, बाप भारत में आते हैं तो रावण भी भारत में आते हैं। है? पहले भारत, तो देखो दूसरे देशों में रावण को नहीं जलाते हैं, भारत में ही रावण को जलाते हैं। है? क्योंकि आते ही हैं भारत में, और शिव भी यही आते हैं, रावण भी यही आते हैं। अब ये है कि रावण ऐसा कोई 10 सिर वाला मनुष्य तो नहीं है, कोई ऐसा 10 सिर वाला मनुष्य होता है क्या? अगर होता होता तो उसकी वंशावली में भी होता, चलो एक दो सिर वाला होता, वो तो होता ही नहीं, तो वो तो 5 विकार हैं, है? और सिर्फ वो 5 विकार स्त्री के नहीं या पुरुष के नहीं, दोनों के, वो देवा किसमें? स्त्री में देवन जास्ती और पुरुषों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जास्ती। तो देखो इन दोनों को मिलाकर रावण कहा जाता है। तो अभी इस राज्य में, इस दुनिया में रावण का राज्य, क्योंकि रावण को देखते तो है ना कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं, क्यों? क्योंकि देवान बहुत है, तो देवान को बड़ा दिखाने के लिए यादगार में रावण को बहुत बड़ा दिखाया है, और राम को छोटा दिखाते हैं। तो देखो देही अभिमानी तो सिर्फ एक बाप ही आकर के बनाते हैं ना, बाकी तो सब देह अभिमानी। तो इसको रावण के राज्य में जो तुम बोलते हो शांति कैसे स्थापन हो, तो शांति कैसे स्थापन हो, सो अभी राम बाप आए हैं ना, उस परम पिता परमात्मा को ही राम कहेंगे ना, है? दो शब्द क्यों जोड़ दिए? क्योंकि परम पिता शिव आत्माओं का बाप, और वो भी योग कैसे सिखाएंगे? योगियों का ईश्वर है कि ज्ञानियों का ईश्वर है? अखूट ज्ञान का भंडार ही है ना, तो वो परमपिता इस सृष्टि में आकर के जो सूर्यवंशी राम गाया हुआ है ना, तो वास्तव में वो राम ही सूर्य का टाइटल लेता है, बाप का बच्चा है ना, तो बच्चे को बाप का टाइटल मिलता है ना। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा है ना कि भगवान बाप आते हैं, वो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को देते हैं। नाम रख दिया विवस्वत, तो उसे राम कहेंगे ना, जो बताते भी हैं, रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, खुश होते हैं, तो उनको राम कहेंगे। तो ऐसे नहीं सिर्फ परमपिता कहेंगे तो राम, नहीं, परमपिता और परमात्मा, तो वो आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, राम राज्य। भाई नया हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया, 5/1968 की प्रातः क्लास का 4th पेज, 3rd पेज। तो देखो ये राम राज्य राम के सिवाय और तो कोई भी नहीं स्थापन कर सकते, वो देखो कहते हैं अयोध्या में राम राज्य था, तो उन्होंने वो गांव का नाम रख दिया अयोध्या है, और राम का मंदिर बनाए रहे। अरे अब राम का मंदिर, राम का घर राम ही बनावेंगे ना, कोई दूसरा बनावेगा? और दूसरा बनावेगा तो शांति स्थापन हो जाएगी? रहेगी तो अशांति ना। तो देखो दूसरा कोई भी नहीं स्थापन कर सकते हैं, और हेवन में ही शांति रहती है। नाम क्यों हेवन रखा? क्योंकि रावण को विन करते हैं, जीत लेते हैं। तो देखो क्यों जीतते हैं? क्योंकि रावण के राज्य में अशांति है, राम के राज्य में शांति सुख। इन बातों को समझने में मुझने की तो कोई बात नहीं है, मुझने की दरकार ही नहीं है, है। और यहां कोई ढूंढने से थोड़ी ही शांति मिल जाएगी, ना कोई मनुष्य बता सकते हैं कि भाई विश्व में शांति कैसे हो। नहीं, मनुष्य तो सप्तमो प्रधान, इस समय में खास जब इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, सभी तमो, सारी दुनिया तमो प्रधान, वो दुनिया ही तमो प्रधान है तो कैसे होंगे यहां रहे, तमो प्रधान ही होंगे, तमो प्रधान दुनिया में सात तमो प्रधान, और सत्व प्रधान दुनिया में सात सत्व प्रधान। तो इसलिए ये तो बाप का ही फर्ज है कि वो सुख शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो उसके लिए ये जो अनेक धर्म हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अशांति फैल रही है, तो जैसे गीता में तो लिखा हुआ है ना, तो बाप भी कहते हैं क्या, जैसे गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो, ऐसे नहीं कि द्वैतवादी द्वापर के आदि में ही सब धर्म आ जाते हैं, नहीं, कलयुग के अंत तक सब धर्म आते रहते हैं। जब सब धर्मों का जखीरा इकट्ठा हो जाता है तब बाप कहते हैं इन सब धर्मों को छोड़ो। अब इन सब धर्मों का विनाश होने का है इसलिए छोड़ो, और यहां तो अब एक धर्म की स्थापना होनी है। नहीं तो बताओ, तुम भी बताओ, जो सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, देवताओं को अद्वैत कहते हैं कि द्वैतवादी कहते हैं, एक धर्म एक राज्य एक कुल एक भाषा, तो वो राज्य कैसे स्थापन हुआ है, किससे कोई लड़ाई की क्या, नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं की, ये तो योग बल और भोग बल की लड़ाई कह सकते हैं क्या, काय की लड़ाई, योगियों की और भोगियों की लड़ाई हो गई, ओम शांति।